एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हमको लगाना है।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
एक भला सामरी। मेरे प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का दास फिर से आपको परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूँ। आज का मेरा संदेश का शीर्षक है एक भला सामरी। इस कहानी को हम बाइबल में लुका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय का 25 से 37 पदों में पाते हैं। इस कहानी को और इस संदेश को सुनने से पहले हम आइए परमेश्वर से दुआ करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। हम सबों को तू स्वीकार कर, हमारे मन और हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके। हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, कि वे तेरे वचन को सुनने सके और समझने सके और तेरे प्रेम को जानने सके और तेरे पास आने सके। पिता मेरे संग विशेष रूप से हो, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला ताकि हम तेरा वचन को अच्छी तरह से पेश करने सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। नेक सामरी की कहानी में मसीह ने सच्चे धर्म की प्रकृति का उदाहरण दिया था। उसने यह दिखाया कि धर्म में केवल सिद्धांत, विश्वास या रीतियां ही नहीं होती हैं, बल्कि प्रेम का व्यवहार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की श्रेष्ठ भलाई चाहना। जब मसीह लोगों को सिखा रहा था तो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? वह बड़ी भीड़ अपनी सांसें रोके उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। याजकों और रबियों ने सोचा कि व्यवस्थापक ने यह प्रश्न करके यीशु को कठिनाई में डाल दिया है, परंतु मुक्तिदाता किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ा। उसने प्रश्नकर्ता से ही उसका उत्तर पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? यहूदी लोग अभी भी यीशु पर आरोप लगा रहे थे कि वह सिनाई पर्वत पर दी गई व्यवस्था को कोई महत्व नहीं देता है, परंतु उसने उसके प्रश्न को ही पलट दिया और जाहिर किया कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से उद्धार हो सकता है। व्यवस्थापक ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यह व्यवस्थापक फरीसियों के पदों और उनके कामों से संतुष्ट नहीं था। वह सही अर्थों में समझने के लिए पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता था। वह मुक्ति के विषय को बहुत महत्व देता था और गंभीरता के साथ उसने मसीह से यह प्रश्न किया था कि मैं क्या करूं, और अपने उत्तर में उसने कहा कि व्यवस्था जो कहती है उन सब विधियों का मैं पालन करता हूं। उसके विचार से इन विधियों का पालन करना कोई महत्व नहीं रखता था, बल्कि ये तो परमेश्वर के दो मुख्य सिद्धांतों को प्रकट करते हैं जो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के लेखों पर आधारित हैं। अपने उत्तर द्वारा मसीह ने व्यवस्था को प्राथमिकता दी थी, इस कारण लोगों की दृष्टि में उसका स्थान रबियों से भी ऊंचा हो गया। अब वे उसे अपराधी नहीं ठहरा सके क्योंकि उसने व्यवस्था के महत्व से इनकार नहीं किया था। यीशु ने कहा, यही कर तो तू जीवित रहेगा। उसने व्यवस्था को ईश्वरीय एकता के रूप में प्रस्तुत किया और इस पाठ में उसने सिखाया कि यह संभव नहीं है कि व्यवस्था में एक को माने और दूसरे को त्याग दें। व्यवस्था की सभी कड़ियों का एक समान महत्व और पालन करने का सिद्धांत है। मनुष्य के अनंत भविष्य का निर्णय उसके संपूर्ण व्यवस्था के पालन करने पर निर्भर करता है। संपूर्ण रूप से परमेश्वर से प्रेम और सारी मानव जाति से निष्पक्ष रूप से प्रेम, इसी सिद्धांत पर अनंत जीवन प्राप्त करना निर्भर है। व्यवस्थापक ने अपने आप को व्यवस्था को तोड़ने वाला स्वीकारा। मसीह के जांच करने वाले शब्दों ने उसे अपराधी ठहरा दिया। व्यवस्था की धार्मिकता को जिसे समझने का वह दावा कर रहा था, उस पर वह चल नहीं रहा था। उसने दूसरे मनुष्यों के साथ प्रेम नहीं दिखाया था। उसे पश्चाताप करने की जरूरत थी, परंतु पश्चाताप करने के स्थान पर उसने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश किया। सत्य को स्वीकार कर लेने के बदले उसने दिखाना चाहा कि आज्ञाओं का पालन करना कितना कठिन है। इस प्रकार से उसने उम्मीद किया कि लोगों की नज़र में वह अपने आप को अपराधी ठहराने से बच सकता है। उद्धारकर्ता के वचन यह प्रकट कर रहे थे कि उसका ऐसा प्रश्न करना कोई अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि इसका उत्तर वह स्वयं दे सकता है। फिर भी उसने एक दूसरा प्रश्न कर दिया, तो मेरा पड़ोसी कौन है? इस प्रकार का प्रश्न यहूदियों के बीच विवादपूर्ण कारण बना हुआ था। इस बात में उन्हें कोई आशंका नहीं थी कि सामरी लोग और अन्य जातियां उनके लिए विदेशी और दुश्मन हैं, परंतु अपनी स्वयं की जाति और विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों में इसकी पहचान कैसे की जाए? याजक, रबी और पुरनिये किसे अपना पड़ोसी माने? उन्होंने तो अपने आप को पवित्र बनाने के लिए रात दिन विधियों और रीतियों का पालन करने में जीवन बिताया और लोगों को सिखाया कि इन निर्बुद्धियों और लापरवाह लोगों के संपर्क में आने से हम अशुद्ध हो जाएंगे और फिर इस अपवित्रता से पवित्र होने के लिए बहुत कठिन प्रयत्न करने होंगे। क्या वे ऐसे अशुद्ध लोगों को अपना पड़ोसी माने? यहाँ पर भी यीशु विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। जो लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे कि उसकी निंदा व अपमान करे, उनकी हठ धार्मिकता पर यीशु ने कुछ नहीं कहा, परंतु एक साधारण सी कहानी का चित्रण उसने अपने सुनने वालों के सामने ऐसा खींचा कि वे लोग स्वर्गीय प्रेम की बहती धारा से अत्यंत ही प्रभावित हुए। इस प्रेम ने उनके हृदय को छू लिया और उस व्यवस्थापक के मुंह से सच्चाई को स्वीकार करा लिया। अंधेरा भगाने के लिए रोशनी को स्वीकारना जरूरी है। गलत को प्रमाणित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सही को प्रस्तुत किया जाए। यह परमेश्वर का असीम प्रेम है जो एक स्वार्थी हृदय की कमजोरी और अपराध तथा पाप को उजागर कर देता है। यीशु ने कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। इसे हम लूका 10 का 30 से 32 में पाते हैं। यह कोई नया दृश्य नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए तो यह एक सामान्य और जानी पहचानी बात थी जिसे मसीह ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। मसीह के वचन को सुन रहे लोगों से अलग हटकर याजक और लेवी लोग सही रूप में वहां से चले गए थे। यरूशलेम से यरीहो की यात्रा करने वालों को यहूदिया के जंगल के एक हिस्से में से होकर गुजरना पड़ता था। यह मार्ग जंगली और पहाड़ी खो में से होकर जाता था और अक्सर डाकू तथा लुटेरे लोग राहगीरों के साथ ऐसी ही मारपीट करते रहते थे। इसी स्थान पर उस यात्री पर आक्रमण किया गया था और जो कुछ धन उसके पास था वह लूट लिया गया, उसे मारकर घायल कर दिया और मार्ग के किनारे अधमरा करके घायल अवस्था में छोड़कर चले गए। जिस समय वह घायल पड़ा हुआ था उसी मार्ग से एक याजक आया, परंतु उसने शायद ही एक सरसरी नजर से उस घायल को देखा हो और अपने मार्ग चला गया। फिर लेवी उसी मार्ग पर दिखाई दिया। क्या घटना घटी है उसे जानने के लिए उसके पांव थम गए और उसने भी उस घायल को देखा। यद्यपि उसे अपना उत्तरदायित्व याद आया, परंतु ऐसा काम करने के लिए उसका मन नहीं चाहा। उसने सोचा कि इधर से ना आया होता तो अच्छा होता, क्योंकि ऐसे घायल को ना देखना पड़ता, और यह सोचते हुए आगे बढ़ गया कि होगा कोई, हमें उसे क्या लेना देना है। ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र काम को करने वाले कार्यकर्ता थे और दावा करते थे कि वे लोग धर्मशास्त्र के बड़े ज्ञानी हैं। वे लोग जनसाधारण के बीच परमेश्वर की ओर से चुने हुए विशेष प्रतिनिधि थे। उन्हें तो चाहिए था कि वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार करते। इसे हम इब्रानियों के 5:2 में पाते हैं। स्वर्ग के स्वर्गदूत इस धरती पर परमेश्वर के परिवार के दुखित लोगों को देखते और सदैव तैयार रहते हैं कि मनुष्यों के साथ मिलकर उनके दुख दर्द को दूर करें। परमेश्वर अपने प्रबंध के अनुसार उस याजक और लेवी को सड़क के किनारे पड़े हुए उस घायल के पास पहुंचाया ताकि वे उसे देखकर उस पर दया करें और उसकी सहायता करें। पूरा स्वर्ग देख रहा था कि उस दुखी मनुष्य की दशा पर उनका हृदय पिघलता है कि नहीं। मूसा अपने किताब में लिखे इसराइली लोगों के लिए कि यदि तुम अपने बैरियों के गधे को भारी वजन लेते हुए देखोगे तो चाहे वह बैरी है उसके लिए भी उस गधे का भारी बोझ को तुम कम करना, ऐसा मूसा अपने लेख में लिखे हैं। परंतु डाकुओं द्वारा घायल किए गए व्यक्ति का विवरण देखकर यीशु ने एक भाई के कष्ट को प्रस्तुत किया था। एक पशु के बोझ से बढ़कर उनके हृदय में मनुष्य के लिए कितनी अधिक दया और कृपा होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से मसीह ने इस कहानी का वर्णन किया था उसके अनुसार व्यवस्थापक को उसकी कोई भी बात ऐसी नहीं लगी कि जो कुछ उसने सीखा है कि व्यवस्था क्या कहती है उसके विरुद्ध वह कुछ कह रहा है। परंतु अब एक दूसरा ही दृश्य सामने आ गया। एक सामरी यात्रा अपनी यात्रा में उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर वह घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था और जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने यह नहीं देखा या सोचा कि वह घायल मनुष्य यहूदी है या किसी अन्य जाति का है। हाँ, सामरी यह अवश्य जानता था कि उसकी जगह पर यदि कोई यहूदी होता और घायल व्यक्ति सामरी होता तो वह घृणा से उसके मुंह पर थूक कर चला जाता। परंतु उसने इन बातों पर समय नहीं गंवाया। उसने यह भी नहीं सोचा कि वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, शायद वह स्वयं डाकुओं का शिकार बन जाए। उसके सामने तो एक घायल तड़पता इंसान था जिसे मदद की अत्यंत ही आवश्यकता थी। उसने अपने स्वयं के कपड़े उतारकर उसमें घायल को लपेट लिया। अपनी यात्रा के लिए जो तेल और दाखरस अपने साथ ले जा रहा था उससे उसने उसके घाव को धोया और तेल लगाया। उसने उसे अपने गधे पर सवार किया और धीरे धीरे उसके साथ साथ चलता रहा ताकि उस घायल को झटका ना लगे जिससे उसका दर्द और बढ़ जाए। वह उसे लेकर एक धर्मशाला में पहुंचा और पूरी रात बड़े प्यार से उसकी देखभाल करता रहा। जब सुबह हुई तब तक शायद वह घायल भी कुछ कुछ आराम महसूस करने लगा था, इसलिए सामरी ने साहस किया कि वह अपनी यात्रा जारी रखे। परंतु वहां से जाने से पहले उसने धर्मशाला की देखभाल करने वाले को खर्च किए हुए धन को अदा किया और आगे खर्च होने वाली जरूरत के लिए उसके पास और धन जमा कर दिया। इससे भी उसे संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने किसी और खर्चे के लिए उस धर्मशाला के रखवाले से कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। कहानी समाप्त हुई और यीशु ने अपनी आंखें व्यवस्थापक पर इस तरह से गड़ा दी कि जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा है और उससे कहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? इतना होने पर भी वह व्यवस्थापक अपने होठों पर सामरी शब्द नहीं लाया और उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। इस प्रकार से हमारा पड़ोसी कौन है, इस प्रश्न का उत्तर सदा सदा के लिए मिल गया। मसीह ने यह दर्शाया कि हमारा पड़ोसी केवल वही नहीं है जो हमारे चर्च का सदस्य है या हमारे विश्वास को मानने वाला है। पड़ोसी का होना किसी जाति, धर्म या स्तर पर आधारित नहीं होता है। हर वह व्यक्ति जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है वह हमारा पड़ोसी है। प्रत्येक वह आत्मा जो शैतान द्वारा कुचली और घायल की गई है वह हमारा पड़ोसी है। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर की धरोहर है वह हमारा पड़ोसी है। नेक सामरी की कहानी द्वारा यीशु ने अपने स्वयं के कार्य और उद्देश्य का चित्रण किया था। शैतान ने मनुष्य जाति के साथ धोखा किया, उसे कुचला, उसे लूटा और उसने उसे बिगाड़ दिया तथा विनाश होने के लिए छोड़ दिया। परंतु मुक्तिदाता ने हमारी असहाय दशा पर तरस खाया और हमारी सहायता करने के लिए उसने अपनी स्वर्गीय महिमा को त्याग दिया। उसने देखा कि हम तो मरने के कगार पर हैं, इसलिए उसने स्वयं हमारे स्थान को ले लिया। उसने हमारे घावों को धोया, मरहम लगाया और अपनी धार्मिकता से हमारे नंगेपन को ढांप दिया। उसने हमारी सुरक्षा के लिए शरण स्थान तैयार किया और हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। हमें छुड़ाने के लिए वह मर गया। अपना स्वयं का उदाहरण देते हुए वह अपने अनुयायियों से कहता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 15:17 और यूहन्ना 13:34 यह हमें बतलाती है। यहां पर यीशु मसीह उन लोगों को बतलाने चाह रहे थे कि हम अपने पड़ोसी से बहुत प्रेम करें। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द में जो मनुष्य हमारे पड़ोसी हैं उनसे प्रेम करके दिखलाएं। जो मनुष्य कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, उससे प्रेम करता हूं या सच्चाई में चलता हूं, उसे जरूरी है कि वह परमेश्वर के बनाए हुए लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग को प्रेम करे, उस पर दया करे, उनकी सहायता करे। अगर हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमारे आसपास के लोगों जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन पर हम दया नहीं दिखाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारा पड़ोसी केवल वही नहीं है जो हमारे अगल बगल हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, जो कहीं भी हैं, जो दुखी हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, उनकी हम मदद करें, परमेश्वर हमारी मदद करे। वो हमें यही वो हमसे यही चाहता है कि हम उसके बनाए हुए लोगों की मदद करें। इससे हम उसके प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं, इससे मालूम होगा कि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए तैयार करेंगे, परमेश्वर हमें अपने राज्य का नागरिक बनाएंगे। तो आप भी इस भले सामरी के समान अपना जीवन को बनाना चाहिए, बनाने की प्रयास करें। हम सबों को भले सामरी के समान बनना है। वह यीशु मसीह का उदाहरण देता है कि यीशु मसीह अपना महिमा छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, हम पर दया किया, हमें बचाने के लिए आया, हमसे अत्यंत प्रेम किया। आइए हम भी एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय फिर से तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमें तेरे पास आने दिया और तेरे सुंदर वचनों को सुनाया। अभी हम जो कुछ तेरे वचनों से सुने हैं, हम तेरे लोगों को, तेरे बनाए हुए लोगों को प्रेम करें, अपने समान प्रेम करें और हम तेरे आज्ञाओं को माने और हम तुझसे प्रेम करें। इसके लिए हमें मदद कर, हमें शक्ति दे पिता, हमें आशीष दे। मेरे हर एक सुनने वालों के संग हो, उनके मनों में तेरा प्रेम भर दे कि हम तेरे प्रेम के राह में चले। हमें आशीष दे पिता, हम मांगते हैं इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।